राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 दिसंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वारे की
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण।
अभी एक विचार किया, अभी क्या सुना है तो श्री शिव जी याद आ गए। कितना उनका उद्योग विलक्षण है। एक दो आदमी को भी परमात्मा की तरफ लगा दे उसका बड़ा भारी महात्म्य है। श्री शेठ जी के द्वारा श्री जयदयाल जी घोष जी का भी द्वारा सुना है लाखों करोड़ों आदमियों को भोजन करा दे तो बड़ा पुण्य है, परंतु एक आदमी को परमात्मा से सम्मुख कर दे उसके समान नहीं है। भोजन से थोड़ी सी तृप्ति होगी और उसके करोड़ों अरबों जन्म हो सकते थे वो बचा करके उसका कल्याण कर दिया तो उसका कितना महत्व। ध्यान दें थोड़ा सा, फिर कहता था वो लाखों करोड़ों को भोजन कराया जाए तो अन्नदानम महादानम। अन्नदान को महादान कहा है। अन्न ही प्राणिनाम प्राणा, अन्न है वो अन्य प्राणियों का प्राण है, तो अन्नदान प्राणदान है, सबसे ऊंचा महादान है। वो दान लाखों और करोड़ों मनुष्यों को भोजन दे तो वो बड़ा भारी पुण्य है, परंतु एक आदमी को परमात्मा की तरफ मुंह मोड़ा दे भगवान तरफ लगा दे उस पुण्य के बराबर नहीं है। वो उनके न जाना करोड़ों अरबों जन्म होता और भगवान की तरफ लेने से उसका कल्याण हो जाता है तो उसका पुण्य बहुत विशेष है। भोजन के बाद तो फिर भूख लग जाती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर फिर कभी किसी का अभाव होता ही नहीं, सदा के लिए पूर्ण हो जाता है। जानने के लायक, मानने के लायक, पाने के लायक, करने के लायक काम है वो सब उसकी कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। तीन शक्ति मनुष्य में है, जानने की, करने की, पाने की। उसको कुछ भी बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है। कृतकृत्य स्वभारत, इसके बाद पूर्ण मत श्लोक बोला करते हैं शांति पाठ। तो ज्ञात ज्ञाप ये सर्वविद भक्ति मान सर्वविद होता है। एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् और कृतकृत्य बुद्धिमान मानो काम करने वो जान गया, जानना चाहिए वो जान गया और करना चाहिए वो कर लिया। तो भगवान को जानता है सर्वविद्धिमान सर्वभावी तक, सर्वभाव से भगवान का भजन करता है वो भगवान को जानता है। तो परमात्मा की तरफ सन्मुख कर देने के समान कोई भी पुण्य नहीं है। किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना, सत्संग में लगा देना, गीता में लगा देना, रामायण में लगा देना, भागवत में लगा देना, किसी तरह से परमात्मा की तरफ सम्मुख कर देना बहुत बड़ा भारी पुण्य है। श्री शेठ जी का उद्योग कितना विलक्षण, ये गीता भवन है, गीता प्रेस, गोविंद भवन कितना निर्माण कर दिया, ये प्रेस के द्वारा कितनी पुस्तकें, कितने भगवान के चित्र, कितने भक्तों से चरित्र, कितनी शिक्षा, कितने ज्ञान, कितना वैराग्य, कितना संतोष, कितना त्याग, जिसका विस्तार किया है। शेर जी ने कहा था कि मेरी ये गीता के दो श्लोक है अंत में, वे गीता का प्रचार करने वाला जैसा मेरा प्यारा होता है ऐसा कोई है नहीं, और भविष्य से मैं तस्माद अन्य प्रियतर हुई इससे समान प्यारा कोई होगा भी नहीं। तो उस गीता का कितना प्रचार किया है, घर घर में जने जने के सामने गीता आ गई। गीता प्रेस होने पर लोगों ने गीता छापना बंद कर दिया, बहुत बड़े बड़े प्रेस है उसे जोड़ी की नहीं सकती है। इतना प्रचार किया है, इतना सत्संग का प्रचार किया है और कितना जोर से चल रहा है। मनुष्य का जो उद्योग होता है भीतर से वो भावना होती है, वो जीते हैं जितने तो होती है, परंतु जो भाव होता है वो शरीर शांत होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब तक मनुष्य का शरीर रहता है तब तक उसका भाव भी संकुचित रहता है कुछ थोड़ा, यद्यपि वो भाव विस्तार होता है, भाव का कायदा ही फैलता है, पर शरीर छूटने पर वो भाव बहुत फैलता है। देख रहा है जमाना तो देखा जाए तो गिरा है, समय जैसा अच्छा था उतना आज नहीं है। सत्य थी, सत्य का पालन है, धर्म का पालन है, आज आस्तिकता है, अच्छाई मनुष्यों में है जो बहुत ज्यादा थी उस समय, उसकी अपेक्षा बहुत घट गई है। तो घटने पर भी सत्संग का प्रचार बढ़ रहा है, भजन ध्यान जब कीर्तन सत्संग में लोग लग रहे हैं, विशेषता से हो रहा है। तो ये बात एक ठीक सच्ची मालूम होती है कि उनके शरीर जाने पर उनके मत का प्रचार होता है, उसका विस्तार होता है, ऐसा एक कायदा सुना था वो देख ले पाता है, ऐसी विलक्षणता है। अब ये गीता भवन बनाया, गोविंद भवन बनाया तो कितनी विलक्षण बात है, कितने लोगों को इसे लाभ हुआ है, इसे कोई पारावार नहीं है, और कितना होगा आगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई हद नहीं है। ऐसा ऐसे भाई बहन सब अगर विचार करे, ऐसा लोगों को लगावे, गीता प्रेस की पुस्तकों को लगावे, लोगों में पढ़ावे, कितना विशेष लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होता है। मेरे को तो अगर पूछे तो मेरे को तो पुस्तकों से बहुत लाभ हुआ है। मैं शेर थी वो मैं जानता नहीं था, पढ़ता था, उस समय कल्याण में लेख आते थे, उसमें जयदयाल गोविंद का ऐसा लिखा हुआ था, इसके लेखक वो है। तो विचार करते कितने विलक्षण पुरुष है ये, मेरे पर एक विचित्र असर पड़ा। लेख पढ़ता था तो देखता कि ये पढ़े लिखे तो विशेष नहीं दिखते, परंतु अनुभव इनका बहुत विलक्षण है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ऐसे पारमार्थिक साधना में बहुत विलक्षण है ये। और गीता के भी बड़े गहरे भावों को जानने वाले हैं, क्यों मेरे गीता की शौक थी पहले ही। संस्कृत पाठशाला में पढ़ता था, वहां मैंने अपने गीता पाठशाला एक अलग खोली थी, गीता पढ़ो पढ़ाओ, रुचि थी गीता की। तो गीता के गहरे भाव समझने में शेर जी के बहुत गहरे लगे थे, ये गीते वहां गहरे उतरे हुए हैं। संस्कृत टीकाएं कई मैंने देखी, मधुसूदनी बहुत विशेष मालूम थी, परंतु उससे भी विशेष गहरे भाव को जानने वाले मेरे को शेर जी मालूम दिए। लेखों से कल्याण में लेख निकलते, उन लेखों से मालूम दिया कि विचित्र थे। तो इतना गहरा अध्ययन उनका था और प्रचार की लगन थी उनके मन में कि लोग किस तरह से उसको लग जाए। इसी केस में एक सज्जन ने कहा था कि मैंने शेर जी से पूछा कि आप इतने सैकड़ों हजारों आदमियों के लिए प्रबंध कर रहे हो, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हो, नौकरानगर जल भरने आदि का प्रबंध कर रहे हो, ठहराने के लिए क्या बात है, क्यों कर रहे हो? तो उत्तर दिया ये कि एक पारमार्थिक आनंद है। लोग सांसारिक विषय भोगों में फंसे हुए हैं, धन संपत्ति मान आदर सत्कार लेकर जो सुख पा रहे हैं, इस सुख से बहुत अलौकिक विलक्षण सुख है, उसमें मेरे को पता है कुछ, तो मेरे मन में आवे कि ऐसा सुख सबको मिल जाए, सबके सब लोग ऐसे सुखी हो जाए, महान सुखी हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसी मेरे लगन इस वास्ते में करता हूँ। तो कितना उनका उद्योग, कितना उनका भाव, कितनी उनकी विलक्षणता, वही इनके मूल में है। यह गीता भवन है, अपना गोविंद भवन है, गीता प्रेस है, ये उनकी वो जो लगन है, उनका ये रूप आया है, छोड़े स्वरूप आया है। उनके मन में थी ये बात, उनकी जीवनी मैंने सुनी है थोड़ी, उसमें भी वे कहते हैं कि मैं ऐसा साधन करना जो किसी को पता न लगे, गुप्त रीति से करना। और बहुत बातें मिली तो विचार किया कि एक आदमी को सुना देना कम से कम, अपने को मिली तो किसी को सुना तो दूं, ऐसी मन में आई। फिर हनुमानदास जी गोविंद का थे, उनको सुनाया, उनके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हुआ तो 5-7 आदमी मिलकर बात करते थे, ऐसे करते करते आज क्या रूप हो गया देखो, कितना विदेशों तक इसका महिमा है। लोग कहते हैं कि गीता प्रेस एक संस्था ऐसी है जो दुनिया का हित करती है। भाई जी ने, शेर जी ने कहा था कि गीता प्रेस जैसा होना चाहिए वैसा हम कर नहीं सके, जैसे आदमी इसमें होने चाहिए उत्साही प्रेमी संयमी, ऐसे ऐसे हम कर नहीं सके, बहुत कमी है हमारे में। पर वो कमी उनकी दृष्टि में देखते हुए भी एक संस्था चमक उठी है, तो उनका ये उद्योग है सबका सब। अपना नाम नहीं चाहती, अपना कुछ प्रचार नहीं चाहते, आदर सत्कार मान सत्कार कुछ नहीं चाहते। गीता प्रेस इतनी बड़ी संस्था में भी ऐसा नहीं शेर जी के कोई कुटुंब के आदमी में किसी पद पर हो, कुछ काम करते हो, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। कितना उनका त्याग था, त्याग के तत्व वो बहुत विलक्षण जानते थे। मैंने उनके पास बैठकर देखा है, सुना है, समझा है, तो त्याग क्या है इस बात का विवेचन गोविंद जी से सुना, ऐसा मैंने और देखे नहीं सुना, बड़े गहरे उतरते थे। उनकी आज ये भावना व्यक्त रूप से हो रही है, कितनी विलक्षण बात थी। तो सज्जनों, आपको हमारे को इसमें और जोरों से चलना चाहिए। पुस्तकों के प्रचार से बहुत लाभ हुआ है, मेरे को तो लाखों लेखों से लाभ हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं उन लेखों से ही खिंचा इधर आया था मैं, पहले लोग आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा ऐसा लोग बोलते थे, मैं उनको श्रेष्ठ जी कहता, तो श्रेष्ठ जी मेरे कहने से श्रेष्ठ जी प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि आप सा ऐसा कहते थे। तो शेठ नाम धनी का नहीं, धनी का है, तो मेरे शेठ नाम धनी का नहीं है, मेरे शेठ नाम है श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको श्रेष्ठ वो शेठ बता है, इस वर्ष मैं कहता था धनी है, इस वर्ष शेठ नहीं कहता, धनी तो शेठ जी बहुत ज्यादा और भी है, आपके शहर में कई धनी है, उनके सामने शेठ जी घर कोई धनी ऐसा है नहीं, इतना ऊंचा बड़े विशेष, परंतु शेठ तो उनको कहते हैं शेठ जी, तो बहुत श्रेष्ठ है। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था रात्रि में, वो कानपुर वाले कोठी में वो रहते थे, बड़ा शौक है सामने, उस पर सत्संग हो रहा था, तो शेठ जी बोले कि हमारे को स्वामी जी कैसे मिल गए, जो सुनाते हैं सत्संग कराते हैं स्वामी जी मिल गए, अच्छे मिल गए जो सत्संग कराते हैं। तो मैंने कहा हमारे को जैसे शेठ मिले आपको ऐसे स्वामी जी नहीं मिले। हमारे शेठ मिले अन्न भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, मकान रहने के मकान भी देते हैं, सत्संग भी देते हैं, उपदेश देते हैं, पुस्तक भी देते हैं, सब देते हैं, ऐसे स्वामी जी आपको नहीं मिले जैसे हमारे को शेठ जी मिले। तो ये विनोद था, वास्तव में शेठ शेठ ही थे, विलक्षण कौन जाने इतनी भीतर में गहराई है, कौन समझे उसको, समझ नहीं सकते थे, विवेचन करते थे। तो बढ़ने से विवेचन होता था, तो मैंने कहा था शेठ जी आप इतना गहरा विवेचन करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि हम लोग उनके पात्र हैं, हम लोग उन बातों को समझते हैं, हम पात्र हैं उनके, ऐसी विलक्षण आप बातें करते हैं, क्या हम लायक हैं? तो उत्तर दिया कि लायक वो पकड़ लेगा, अब नहीं तो कोई भावी में भी जन्मेगा, कोई भी उत्कंठित होगा तो उसको ये भाव मिल जाएंगे, हमारे आकाश में रहेगा, सत्य बातें वो सत्य रहती है, उसका नाश नहीं होता है, जो कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगा। देख हम लोगों को देख कर कहते हो ऐसे देख रहते हैं, तो अब पात्र के अनुसार ही कहेंगे, इतनी ऊंची ऊंची बात कैसे कहेंगे, मेरे को आश्चर्य आता था। तो इसका उत्तर दिया ये कितनी लंबी चौड़ी बात, शेर जी ने कहा था कि मैं एक पत्र लिखाता हूँ किसी एक व्यक्ति को, तो मेरे आता है कि इसका 100 वर्ष के बाद, 200 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद इसका क्या असर पड़ेगा पत्र का, ऐसे देख कर लिखता हूँ, भाई कौन मान ली बताओ, किसी के मन में आती है बात, उन्हें कहीं भी बात है, ये पत्र लिखाता हूँ उसमें कितना असर पड़े अभी और 100, 200, 500 वर्षों के बाद इस पत्र का क्या असर पड़ेगा, ऐसे सोच को समझते हो। तो हर एक काम करते थे बहुत विचित्र ढंग से, निराले से सेठ ऐसा काम करते थे, उनकी ये संस्था है सज्जनों, उसके अनुसार अपना जीवन बनना चाहिए, वैसे गीता के अनुसार जीवन बन जाए तो कितने वो प्रसन्न होंगे, जहां है वहां ही उनकी बड़ी भारी सेवा है ये, उनके उपकार का बदला कोई दे नहीं सकता, जैसे हमारी माँ सेवा करती है, हमारा पालन करती है, ये माताएं बैठी है, तो माँ का कोई बदला उतार नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि माँ का बदला उतार दे, माँ धारण करती है, पालन करती है, जन्म देती है, पालन करती है, ऐसा पालन करके उपकार माँ करती है, ऐसा संसार मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, बदला को उतार ही नहीं सकता, इतनी काम है। दुख की बात है आज माताएं माँ बनने से इनकार करती है, माँ बनना बंद करती है, रो में क्या करे, हमें दुख होता है, ये भाई और बहन ऐसे बढ़ गए जो ऐसे धर्म के इस प्रशंसा में ऐसे कल्याण के मार्ग में आते हुए जीवों को रोक देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इस मार्ग का रुकावट कर देती है, जन्म नहीं देती है, लड़कियों को गिरा देती है, वो जगत जननी है, मातृशक्ति है, बच्ची है वो माँ है, माँ माँ बनने वाली है, तो माँ के बहुत पुत्र हो सकते हैं और संपूर्ण पुत्रों का नाश कर देती, एक बच्चे का गर्भ गिर जाती है तो बीसों पचासों बच्चों को जन्म देने वाले का नाश कर देते हैं। कितनी बड़ी भारी हत्या करती है, माँ बनना बंद कर देती है, स्त्री का कोई दर्जा नहीं है, स्त्री तो एक भोग है, भोग भोग करने के एक जगह है, वो कोई आदर है। राम जी ने महाराज लंका में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई तब कहा है कि मिलन सोदर भाता मेता नहीं, नानी नारी हानि विशेष खति नहीं, सीता न मिले तो स्त्री है हमारी, स्त्री मिल जाए स्त्री में से कोई विशेष क्षति नहीं है, सीता जैसी स्त्री, जगत जननी सीता जैसी, उसके लिए राम जी कहते हैं कि नानी हानि विशेष क्षति नहीं, लक्ष्मण हमारा मर जाए, स्त्री न मिले तो नर से ही ना जाओ कहीं भी। तो नारी की तो यह दशा है पर माँ की ये नहीं है। वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं राम जी, और बेटा आज सवारी निकलेगी, बहुत देरी हो जाएगी, कुछ मीठा खा लो, ये माँ का स्वभाव है, खिलाने का स्वभाव है, खा ले बेटा देरी बहुत हो जाएगी। तब राम जी ने कहा माँ मेरे को तो राज मिल गया, अब राज सवारी नहीं निकलेगी, राज मिल गया मेरे को, वनवास का राज मिल गया, मालूम हुआ कि इनको वनवास में जाने का हुक्म दे दिया है, पिताजी ने मेरे को राज्य दे दिया, बनवास का राज्य ये नहीं वनवास निकाल दिया, ऐसा नहीं जंगल में निकाल दिया, नहीं वनवास का राज्य दे दिया मेरे को, वनवास का राज्य दे दिया तो वनवास में भेज देंगे। तो कौशल्या माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी ने अगर वनवास में भेजा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, बेटा तुम्हारे लिए मेरा वचन श्रेष्ठ है, माँ और बाप दोनों कहे वहाँ बाप के वचन का टाल दो और माँ के वचन का टालना नहीं चाहिए, तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा है, मैं कहता हूँ तुम यहाँ शहर में रहो जंगल मत जाओ, तो दोनों बातों की बात मिलान करने से मेरा दर्जा ऊंचा है। बड़ी श्रेष्ठ माता कौशल्या राम जी की माँ, कितनी पतिव्रता कितने धर्म को जानने वाली, वो कह रही है कि मेरा दर्जा ऊंचा है, अपनी प्रशंसा नहीं करती, रामलला को कष्ट न हो वनवास का दुख न भोगे, इस बात को लेकर इन परवाह नहीं करी, कह दे तुम्हारे लिए माँ का वचन ऊंचा है, मैं कहती हूँ रहो, अरे जो पितुमात कहो बन जाना, अगर तुम्हारी छोटी माँ ने कहा है वन में जाने का तो जाओ जाओ तुम शतपद समाना, जो पितुमात कहो बन जाना तो आनंद शतावध समाना, वो जंगल सौ योद्धा का समान है, पिता से सौ गुणा अधिक तो मेरा है, यार मेरे से सौ गुणा अधिकार के एक अधिकार है, उसने कहा तो बेटा जाओ सौ गुणा तुम्हारे अयोध्या सौ है, कितनी विलक्षण आज सौत की सौत वो तो उनके ईर्षा करती है उसका सह नहीं सकती, अरे कौशल्या अम्मा कितनी उदारता से कह रही है राम जी को जंगल में जाने के लिए, राम जी को वन में वनवास में जाने के लिए, जो राम जी कितने प्यारे हैं कौशल्या माता को, कितने प्यारे हैं, और वो कहते बेटा शतवध से बैठ जाओ, इतना उदार भाव है, तो माता का इतना उदार भाव है, ऐसी माताएं होती है, अब माँ बनना बंद कर देते हो, ये भाई लोग बंद कर देते हैं। कई जगह मेरे पास एक पत्र आया था मेरे पास में कि पति तंग करते हैं कि तुम ऑपरेशन करा लो, मैं कहती हूँ मैं पालन करूंगी, आप क्या बात है, जितना तकलीफ है मैं करूंगी, हम मानते नहीं है, मैं फिर अधिकार फिर वो मिल गए तो उन्होंने हट छोड़ दिया, नहीं तो बहुत तंग करते थे, लड़की बेचारी राजपूतों क्षतियों की लड़की वो क्या करे, वो पहले तंग करते थे, तो पुरुष भी इस तरह से तंग करते हैं, स्त्रियां भी इस तरह से करती है। पराशर स्मृति में लेख आया है कि यत पापम ब्रह्म हत्याया, जो ब्रह्म हत्या का पाप है, चार महापातक है, हत्या में ब्रह्म हत्या का, खाने में मदिरा पान का, चोरी में सोने और रत्नों की चोरी का, और गुरु पत्नी गमन, ये चार महापातक है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, उसे दूना पाप गर्भ गिराने का है, महापातक से दूना यत् पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्त न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, तो पाप दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो भी देते, पति को चाहे उससे स्त्री का त्याग कर दे, जो गर्भ गिरा दे उसका त्याग ही कर दे, ऐसी पराशर स्मृति का ऐसी घोर पाप करती है। अंग्रेजों के राज्य में कोई गर्भ गिरा दे तो 7 वर्ष कैद होती थी, आज सरकार कह रही है, खुली कह रही है, गर्भ गिराओ, गर्भ गिराओ, बोर्ड लिखा हुआ देखा है, गर्भ गिराओ, यहाँ आ जाओ, गर्भ गिरा देना प्रबंध है, गर्भ गर्भ गिराओ। ये दशा हो रही है, क्या एक तांडव नृत्य कर रहा है कलयुग, कितना घोर कलयुग आ रहा है। शेष जी की मूल संस्था शेष जी में, इसमें भी बहुत सी बहनों माताएं इस काम में लगी हुई है, बड़ा दुख होता है। माँ को देख करके प्रसन्नता होती है, बच्चे को माँ याद आ जाती है। शंकराचार्य महाराज आचार्यों में बड़े ऊंचे आचार्य माने जाते हैं, वे आचार्य प्रबोध सुधाकर में लिखते हैं, कृष्णाभिधाने माता कृष्णाभिधाने, हे कृष्ण हमारी माँ मेरी रक्षा करो, माँ माँ बोलते हुए। बूढ़े संत मैंने देखा है, बहुत वृद्ध बुखार आया, तू कहते हे माँ अब साधु हो गए, अब माँ कहाँ बैठे, बूढ़े मंडप को चले, सुधारावी महाराज की बात है, बुखार आया तो हाय माँ, ऐसा नाम आता है, तो कितनी एक माँ विशेष चीज है, वो माँ बनना बंद कर दे क्या करो, ये बड़ी भारी अनर्थ की बात है। वंश नष्ट हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी, जन्मना तो बंद कर दिया, मरना बंद कर दिया, मन का रहना तो खुला है, अब बंद कर दो जन्मना मरना खुला है, तो वंश रहेगा क्या आप बताओ, जन्मना को तो बंद और मरना नहीं खुला, तो कितना दिन चलेगा, क्या विचार होगा, खत्म हो जाएगा, कितना पाप है उसमें, जिसमें लड़के हो तो गर्भ गिरा दो। अभी मैंने सुना है जयपुर की बात सुनी है भाई, कि उसमें कुमारा छोरा और छोरी गणना करी, जिसमें 4 छोरा बचे 3 छोरी है, कहते 25 वर्ष पे 4 छोरा और 2 छोरी रहेगी, तो बोलो वंश कैसे चलेगा बचाओ, अब 4 में 2 का ब्याह होगा, 2 ब्याह हो गए, छोरी यही नहीं पीछे, अरे उसी छोरियों ब्याह रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि माताएं होती हुई मातृशक्ति का नाश कर रही है, मातृशक्ति का नाश कर रही है माताएं, ये किसकी चाल है आप जानते, आपको पता नहीं है। कुतिया बच्चा देती है ना, मैं देखी हुई बात कहता हूं, कुतिया बच्चा देती है, उसमें दोनों होते हैं, उचरिया उचरिया होता है, मानो कुत्ती भी होती है कुत्ता भी होता है, दोनों होते हैं उसमें बच्चे, तो कुतिया आती है वो कुतिया को मार देती है, और कुत्ता आता है कुत्ते को मार देता है, ये कुत्तों की जात है, ये जो स्त्री स्त्री का नाश करे, ये मनुष्य की बात नहीं है। कुत्ता कहीं जाएगा तो कुत्ते कुत्ता लड़ेगा, कुत्ती नहीं लड़ेगी, और कुत्ती जाएगी तो कुत्ती लड़ेगी, कुत्ता नहीं लड़ेगा। आप देख लेना, मेरे देखने की बात है, जानता हूं क्यों कि हमारी ये हमारी जगह ये ले लेगी, दूसरी कुतिया हो जाएगी तो मेरी जगह ये ले लेगी, इस बात कुत्ती का मारती है, कुत्ता देखता है मेरी जगह आ जाएगा तो ये कुतिया को ये ले लेगा, इस बात से कुछ मारते हैं, वो कुतिया में नाश करने वाली इन प्रवृत्ति हो गई, बहनों माता हमें कन्या गिराने के वो संस्था है, जितनी शेर जी ने स्थापन करी है, कितना उनका प्रचार है, कितना विलक्षण बात है, उसमें ये दशा हो रही है। मेरे को कहते हैं साधु, कहते हैं कि आप ये तो गृहस्थों का काम है, अरे गृहस्थों का हमारी बात तो साधुओं की बात सुनेगा कौन, साधुओं के सामने ईसाई सुनेगा, मुसलमान सुनेंगे, क्या यहूदी सुनेंगे, क्या पारसी सुनेंगे, सुनेंगे तो यही, और इसमें जितने कल्याण की बात बताई है महाराज, पति वृद्धन में कल्याण हो जाए, माता पिता की भक्ति से कल्याण हो जाए, गुरु की भक्ति से कल्याण हो जाए, राजा की भक्ति से कल्याण हो जाए, सेवक है वो नौकर है वो मालिक है कल्याण कल्याण हो जाए, उद्धार का इतना सस्ता रास्ता किसी धर्म में नहीं है, उस धर्म में आने वाले जनता को ही नाश कर देना, आने ही नहीं देना, कितनी हत्या कर रही है, कितना बड़ा भाई पाप कर रही है। मेरे को मन गए तुम छोड़ो, मैं तो कभी आ जाते कह देता हूँ, नहीं तो मैं तो कम कर दिया आजकल, उतना नहीं बोलता हूँ, तो करूँ क्या, मैं मन में आ जाती है तब कहता हूँ, बहनों माताओं आप कृपा करो, आप कृपा से मिले, आप माँ हो, माँ माँ क्या नाम है आपका, क्या सुना। तो आज सिर्फ याद आ गए, तो उनकी ये संस्था है, उनका बना हुआ भवन है, नारायण ने बनाया भवन ऐसे जैसे राजा है, अगर नारायण कोई हो तो कितने राजी हुए आज कि हमारे भवन में इतनी सत्संग होती है। सिर्फ मुश्किल ये होगी कि भवन में मावे नहीं आते, और जब सत्संग करोगे भवन माते नहीं, कौन भरता नहीं तो भवन अब माते नहीं, कितने वो खुश हो जाए, कितने प्रसन्न हो जाए। तो आप लोगों का उत्साह ऐसा है, वो प्रशंसनीय है, आदरणीय है, परंतु लोग काम महिलाओं माताओं बहनों जाति का नाश मत करो, हत्या मत करो, पर कल्याण का मार्ग मत रोको, जीव बेचारा कल्याण के लिए आए उन्हें तो पहले लोग कम लगते हैं, जिसमें भी लगने की महाराज वो परंपरा को ही नाश कर रहे हो। तो भगवान में सच से डरो, भाई और बहनों से कहना है भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, पद गान करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों का प्रचार करो, और यह सती पुस्तकों का प्रचार करो, माताओं को चाहिए अपने शास्त्र पुस्तक रखे, एक एक प्रकार की ऐसी सरल भक्तों का चरित्र छोटी छोटी पुस्तक है, तो देखो लो, देखो पढ़ो, पढ़ लो फिर हमारे फिर लो, ये दूसरी ले जाओ, ये दूसरी पढ़ लो, तीसरे जाओ, ये तीसरी पढ़ लो, चौथी ले जाओ, ऐसे आपस में दे तो पैसा तो खर्चा कम होगा खर्चा, और पुण्य बहुत बड़ा भारी होगा। पुण्य में दे देने का भी पुण्य है, पुस्तक दे दो, पुस्तक दान का भी पुण्य है, पर दान का इतना नहीं जैसे इस प्रकार का पुण्य है। दान वाला तो ले लिया ढंग से पढ़ेगा नहीं, वो कहते पढ़ने वाला भी है क्यों, पढ़ ली पूरी, थोड़ी पढ़ी, अच्छा पूरी पढ़ो, क्यों पूरी पढ़ ली, अच्छा दूसरी जो। तो पढ़ने से जितना लाभ होगा धरी हुई पुस्तक से नहीं। शेर जी तो कहते थे गीता प्रेस की पुस्तक धरी हुई पढ़ी हुई भी तुम्हारा उपहार करेगी, उन्होंने ये कहा था पढ़ी पढ़ी भी उपहार करेगी, वो पढ़ी पढ़ी भी कल्याण करेगी, उद्धार करेगी। पढ़ने में कितना उद्धार हो, कितनी विचार होगा। मेला होता तो उसमें ठेला देकर हाथ में झोला लेकर के पुस्तकों को बिक्री करो, मुक्ति हो जाएगी, शेर जी की शब्द है, ऐसे पुस्तकों पर मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इतनी बात है। क्योंकि कल्याण की बात भरी हुई है, परमात्मा भरी हुई बात है। तो इतने कितना उनकी हृदय में एक विचार था कि जीवों का कल्याण हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, कैसे मुक्ति हो जाए, ये लगन संतों के देखना नहीं, शेर जी जैसी लगन देखने में नहीं आया। निष्काम भाव की आचार्य मानता हूँ, ज्ञान के आचार्य तो है शंकराचार्य, भक्ति के रामानुजाचार्य, पर निष्काम भाव के आचार्य शेठ। ज्यादा बीमारी हो गई, एक दिन बैठे रिकॉर्ड को पत्र सुनते 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 गिर गए। ऐसी अवस्था में किसी ने कह दिया कि हमारे आप रोग कैसे दूर हो, कोई अनुष्ठान किया जाए, ध्यान देना बात कितनी विचित्र बात है, कोई अनुष्ठान किया जाए, मंत्र जप जाए, कोई दान किया जाए जिससे आपकी बीमारी मिट जाए। तो शेठ बोले इतना साफ नहीं, पर कोई ऐसा उपाय किया जाए। तो शेठ जी बोले कि जो कोई उपाय करता है मेरे बीमारी दूर करने के लिए वो मेरा शत्रु है, महान शत्रु है। शत्रु कैसे, हमारे प्रभु इष्ट देव का बनाया हुआ विधान का नाश करता है, उनका विधान है मेरे को बीमारी होना, ये उस विधान नाश करता है, हमारे प्रभु के विधान का नाश करता है, मेरा महान शत्रु है। किसकी ऊपर शक्ति की बात, किसकी पैदा हो सकती है, ये मेरे सामने बात नौकरी की कितनी विशेष बात है। लोग समझे आप मित्र है जो आपका बीमारी दूर हो जाए, वो तो बीमारी नहीं, हमारे प्रभु का विधान है, उसके बता देता है भगवान की विधान का नाश करता है, हमारे इष्ट देव का अपमान करता है, तो शत्रु हो गया। कितनी विलक्षण, कितना निष्काम भाव। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ गया था, उस समय यहाँ था उस गोविंद भवन में पुराने में, तो कहा कोई आदमी सेवा करने वाले हो तो पूछो, कई आदमी को मैंने पूछा गए कि सेवा करने को, सौ सवा सौ जगह कीर्तन हो रहा था, बस दो घंटा कीर्तन कर जाओ एक दिन चावल ले जाओ, कैसा तो मछली खाने वाले फिर पार पाओ चावल तो खाएंगे ही, तो चावल देना दो घंटा कीर्तन कर चावल ले जाओ, ऐसे गंध खोल दिए थे कई जगह। उनमें मोटर लेकर शेड देखने को गए तो रात्रि जो ठहरे वहां लोग इकट्ठे हुए बंगाली, सिर्फ बंगाली में व्याख्यान देते तो बंगाली में व्याख्यान दिया, उस गोविंद भवन था मैंने सुना वो व्याख्यान दिया सबको, व्याख्यान देने पर वो बंगाली बोलने लगे कि महाराज आपने बांकुड़ा जिले को जिला दिया, इतना जीव मर जाते अकाल में उनको आपने दिला दिया, बहुत बड़ा भाई पुण्य किया है आपने इतना दिया। शेर जी ने उत्तर दिया महाराज मैं तो सुनकर दंग रह गया, आदमी को उत्तम उत्तर से पैदा नहीं होता, ऐसा उत्तर दिया। ऐसे कहा कि देखो आप कहते हो कि बाबरो जिला दिया आपने खर्च किया, हमने बंगाल में आकर बंगाल में जितना धन पैदा किया है उतना धन भी हमने लगाया नहीं, वो लगा रहे तो आप कैसी आपको दी हमने क्या दी, बंगाल से तो कमाया हमने, तो बंगाल से लिया हुआ धन सबका सब पूरा का पूरा दे दें तब तो आपकी पूरी दीजिए, हम तो आपको पूरा नहीं दिया, हमने उसमें से कम खर्च किया है, हमने उपहार क्या किया, वो तो आपका ही है आपको ही दिया तो दिए वस्तु वो भी तुम बनी सवार करे, मेरा ऐसी बात पैदा कैसे होगा, पैदा नहीं होती। श्री जी ने कहा आप क्या विचार करते क्या महिमा करते हो, फिर हरिकृष्ण जी की बात हुई, अपने महादेव जी लोही आए गीता के बड़े प्रेमी थे, तो वे कोई हरिकृष्ण जी पूछ रहे कि ये जो आपने काम शुरू किया है चावलों को देना ये लोगों को देना ये कितने तक लिमिट कितना बंधा है, लाख दस लाख दस लाख कितना कितना, तो उत्तर दिया कि जब तक इनकी दशा जैसी हमारी दशा न हो जाए तब तक। ऐसी बात है मैं कहां कुछ ऐसे बताओ है कोई ऐसा, जब तक ऐसी दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक रहेंगे, ऐसी दशा हो जाए तो हम भी वैसे ही वैसे ही हमारे भाई सब बरबर हो जाए, कहां दाज निकलती मैं लाखों करोड़ रुपए रहने पर भी गायों की रक्षा के लिए इनसे पैसा नहीं निकलते। गोविंद मोहन शेठ ने कहा था छानवे सम्मत में अकाल पड़ा गया मर रही है, शेठ जी ने व्याख्यान दिया मैं व्याख्यान मौजूद था, मारवाड़ी लोग प्रतिशत एक रुपया निकाले तो मारवाड़ी गऊ बच जाए, इतने रुपये पड़े मारवाड़ी उपास में प्रतिशत एक रुपया तो गऊ बच जाए, प्रतिशत एक रुपया नहीं दे सकते, कहा वो दशा के देते देते जो लेने वाले उनकी दशा हमारी हो जाए तब तक, ये हद और एक दीजिए एक रुपया भी दिया, मारवाड़ी लोग प्रतिशत एक रुपया दे दे तो मारवाड़ी गाय बच गया, शेर जी व्याख्यान दिया था बड़ा गहना कशी ने। शेर जी खुद कहते थे हम कमाना जितना सुगम समझते हैं देना इतना सुगम नहीं, देना बड़ा कठिन है, लोग समझते हैं पैदा करना कठिन है, हमारे पैदा करना कठिन नहीं है देना कठिन है, क्यों पैदा करने में तो सब लोग सहमत हो जाए और देने में तो लोग बैरी हो जाए घर वाले कि पिताजी का माथा खराब हो गया, भाई बंधु विरोध कर वैसे कमाने में सब सहमत तो देने में बड़ा कठिन काम है, और पैसा हाथ से दिया जाए ये बड़ा कठिन है, छोड़कर मर जाएंगे, तीन गति है द्रव्य की दान भोग और उनाश, दो गति जाकी नहीं गति तीसरी विकास, तीन गति होती है दान हो भोग हो तो नाश हो जाए अपने काम में सुख में लगावे अथवा दान में देवे तो दान भोग और नाश, अब दो गति नहीं ना तो भोग सकते ना दे सकते तो नाश ही होगा अंत में, चाहे धन नाश हो जाए चाहे आप नाश हो जाए चाहे दून नाश हो जाए नाश ही होगा और होगा क्या, अंत में मर जाएंगे, इतना होने पर भी ये उनके जागृत नहीं होगी किसी तरह से हमारे द्रव्य से गाया जी जाए मनुष्यों का कल्याण हो जाए मनुष्यों का हित हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। शेर जी की ये लगन थी, शेर जी ने मेरे एकांत में बात कही, हरिकृष्ण कहता है कि भाई जी अपने पास ही बात है आप दूसरे रुपए तू लो, वो लगना था उसे लेना, उसे कहते इतना 100 देना नहीं 50 दे शादी क्यों कहते थे 1000 नहीं 500 शायद बस तो दूसरा के लोही क्यों अपने पास है रुपये स्वामी जी मारे हरिकृष्ण रुपये मेरे दूसरे के मेरे फर्क क्या है लगाने का मन है तो उसको नहीं मैं उनको जिसका मन है उसे देव मेरे क्या फर्क है हरिकृष्ण रुपया दूसरे रुपये एक बार एक खंड में गई हरिकृष्ण ये कहता है कितनी बात है कितने सब लोगों को सबका उपकार में लगे सबका धन लगे सबका समय लगे सबका शरीर क्रिया सब भगवान की प्राप्ति में लग जाए सही कितनी लगन कितनी विशेष थी वो लगन ही अभी सामने आ रही वो भाव ये भी आ रहे हैं लोगों में जागृत हो रहा है जमाना तो गिरा है उसके पैसा पर गिरने पर भी सत्संग की रुचि गिरी नहीं है सत्संग करते हैं आचरण में कम लाते तो कम है पर कम तो कुछ न कुछ हो ही रहा है ऐसे गए गुजरे जमाने में सुनने को सुनाने को हमारी बातें मिलती है ये सब सृष्टि की बात अलौकिक बात मेरे मन में कई बार आई है कि भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई 100-200 वर्ष पहले होकर कि कविता प्रेसोग्राम जन्मते तो हम देखते ही नहीं अथवा ये जब 20-100-200 वर्ष बाद जन्मते तो क्या देखते हमारा जन्म भी उनके सामने हुआ और सामने हम आए और हम भी पढ़ने वाले सुनने वाले समझे और सामने सुनने को आ गए बचपन में बात याद आती थी गोस्वामी जी रामायण पढ़ता तो वे रामायण पर चले गए गोस्वामी जी होते तो उनके मुख से रामायण सुनते परंतु ये नहीं रहेगी गीता की बात है तत्व बेचनी है अब शेठ जी से सुनते सुनते हमने सुनी ज्यादा लिखिए पीछे बहुत बार सुनी हमारे सामने लिखी गई है इसमें भाग्य कितनी बात है समय पाकर आप हम नहीं जाएंगे तो अनुमान होता है अगर हमारी जनता ये चाहेगी कि सीता शेठ जी विवेचन करते तो हम गीता का विवेचन सुनते कैसा करते थे जैसे मेरे मन में आई कि गोस्वामी जी महाराज रामायण कहते हैं हम सुनते जो लोगों का जीवन में पर रामायण सुनी सुनी भी है पढ़ी भी है सुनाई भी है शेठ ने कहा गीता का प्रचार करो मेरे को कहा स्वामी जी गीता का प्रसार करो वो कैसे करो मैं लिखाओ करो मेरे को आता नहीं वैसा लिखने करना आता नहीं मेरे को तो ज्यादा एक बार भी महाराज वो वचन असर कर गया जो गीता भी लिखी गई कुछ जगह भी लिखी जाती है लेकिन आता नहीं है विशेष जानती नहीं है इतने पर भी लोग लिख रहे हैं जैसे ठेला होता है रेलवाई का उसको चला करके और छोड़ देते कर 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 चलता रहता है इसलिए चलता है महाराज छेटी जगह चलाया एक धक्का लगा दो थोड़ा सा बद्रीदास जी गोविंद का कह रहे थे कि जब जैदा का प्रसाद में जैदा कहते जैदा गोविंद का बद्रू बद्रू जैदा मित्रता नहीं आपस में ये बद्रू है जैदा ये आपस में प्रेम था तो बद्रीदास जी ने कहा बद्रीदास जी खुद कही हुई बात है जब प्रसाद बहुत कम था तो सब उन लोग जितने थे आज तो शेठ जी के साथ मैं सोऊंगा रात्रि में तो शेठ जी सोते कोई आज मैं सोऊंगा साथ उनको उस विशेषता से विशेष चमत्कार मिलता था तो बद्रीदास जी मैं सोऊंगा आज साथ में जदे के साथ तो सोए तो नींद नहीं आई इतना आनंद इतनी विलक्षणता आई नींद आई ही नहीं तो धीरे से उठकर नीचे बैठ गया तो शेर जी नींद खुली बद्रू नीचे कैसे बैठा है तू तो? ज्यादा नींद में वो नहीं आई आनंद आया इतना उस आनंद में नींद आ गई नहीं इस बार देखकर मैं चलपल करूंगा तो ज्यादा ही नींद खुल जाएगी इस बार से चुपचाप नीचे बैठा हूँ तो क्या विचार करता है मैं विचार करता हूँ कृष्ण भगवान बाल बालों के साथ खेलते थे और सब खेल रहे साथ में कभी भगवान ने नहीं कहा गीता पढ़ो तुम बलि विश्वदेव करो तुम ये संध्या करो तुम जनेऊ ले लो कभी भाई जी कहा ही नहीं शेठ जी ये कृष्ण भगवान ने बाल बालों से देख लो और तू पीछे पड़ा है के नाम जप करो गीता याद करो गीता पढ़ो बलि विश्वदेव करो दान पुण्य करो ये क्या बात है मेरे मन में आई, दादा जी कहते हैं, खुद उन्हें कही हुई बात कहता हूँ, मेरे मन में तेरे साथ रह गए, फिर उनको करना क्या बाकी रहा, जो कृष्ण भगवान के साथ खेलते हैं उनको क्या करना बाकी रहा, क्या कहते भगवान, तुम गीता पढ़ो, तुम बलिवेश करो, तुम जिन्हे ले लो, तुम संध्या करो, कह रहे आप जो पीछे ही पड़े हो, क्या बात है, हमारे क्या बाकी रह गया, तेरे साथ खेलते हैं। स्वीकार तो सच्ची नहीं स्वीकार किया शिव जी ने, तो फिर ये कि ऐसा कर दे तो कई दिन ये प्रकार चलता रहे, जिन्हें उलझ रहे, श्रद्धा करते रहे, ये बदवेश करते रहे, ये शुभ काम चलता रहे, ये नहीं तुम लोगों की, ये नहीं अगाड़ी बहुत वर्षों तक चलता रहे, कितने बीस वृष्टि कृष्ण दुनिया का उद्धार हुआ, पत्र लिखने में सैकड़ों आदमी वर्षों वर्षों के बाद क्या असर पड़ेगा, इस दृष्टि से वो काम करते थे, उनकी ये संस्था है भाई। मैं तो बीच में आई, कोई कोई कहते हैं कि स्वामी जी आपने बहुत प्रचार किया, हम तो बड़े चलती गद्दी पर आकर बैठ के चलता है बात, जब माया रसोई बनाती है ना तो रसोई तपे तुम्हें बता दो भाई, रोटी हमने बना ली, अब तपा तू है तवा है तपे रोटी बना लो, हम तो तपे रोटी बनाते हैं तपे तवे समझते होगी हमारी भाषा, तपे तवे रोटी बना लो, कोई नया रोशनी करनी नहीं, नया आग जुगाना नहीं, कुछ नहीं करना है, तपा तू है तू भी रोटी बना, कोई बना लो अपना बन जाएगी, जो हम तो तपे तपे रोटी बनाते हैं, जो तूने किया हुआ है हमारी कर दे, कोई संत महात्मा बड़े बड़े हुए हमारा वेश देख रहे, महाराज आप महात्मा हो संत हो, अरे भाई हमारे अच्छे अच्छे संत हो गए, उनके नाम रोटी भी हमारे को मिलती है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, तो उनकी कृपा से मिलता है, उनका ही काम किया हुआ है, शुरू कर देना गीता प्रेस शुरू कर देना, गोविंद भवन गीता भवन शुरू कर देना, आरंभ कर देना, चलाना बहुत कठिन बात है, चलते हुए तो कोई बात नहीं, कोई बात चलते चलते कोई सारा लगा दो, चल रहे हैं ठेला धक्का लगा दे, बात है पर शुरू कर देना महाराज, कितनी कठिन बात है। लोग कहते हैं इस बढ़िया जाति में जो लोभ के पीछे पड़े हैं, पैसा है पैसा हर पैसा, पाप ताप कुछ भी हो परवाह नहीं पैसों के लिए, उस जाति में इतना प्रचार गीता का है, इतना सत्संग का कर दिया, कोई शेठ भी नहीं था, ये तो बहुत सुनाया उन्होंने, लोग भी ये क्रम कब माने, विदेशों में कहा जाओ गांव में बैठे हैं दुकान किए हुए, उनको भाषा नहीं समझते, देशों में देशों में गाँवों में वहां भी बैठ के बस पैसा पैदा है पैसा है पैसा है पैसा करने वाला, भजन ध्यान की कीर्तन से सत्संग की बात है, कितनी कितनी बात है विचित्र विचित्र। एक साधु कह रहे थे गीता जयंती का उत्सव हुआ तो उसमें बड़े बड़े विद्वान आए और गीता जी पर बोलने लगे, विमल मुनि कहते थे मैं देख रहे हमारे वहाँ वाणिया लोग बोले जितने नहीं बोलते इतने पंडित उनसे हुए हैं, गीता के विषय वाणिया बोलते उसे नहीं बोल सकते, इतने पंडित होकर के बढ़िया बोलते हम बात नहीं संस्कृत जानते ही नहीं, उतने गीता के विषय नहीं कह सकते, अब कौन कह रहा है गीता का दिन कहा है, विद्वान बड़े पाठ करने वाले उसने वर्णमाला पढ़ी नहीं, रामायण का पाठ होता है उसमें अंगुल फिर गीता रामायण पढ़ने लगती पाठ होता है शास्त्र पर हो गया, ऐसे रामायण पढ़ने आ गया गीता पढ़ने आ गया, क्या पढ़ने से ये प्रासादिक ग्रंथ है गीता है रामायण है, ये कृपा करते हैं, स्वयं आ जाए जहां भक्ति आपकी हुई प्रेम से पढ़ने लगो आ जाएगा, कृपा करते हैं स्वयं, ऐसे शेर जी की पुस्तक में एक तो ध्यानावस्था प्रभु बात लाभ एक प्रेम भक्ति प्रकाश, ये दो पुस्तक ऐसी विलक्षण है कि जो नियम पाठ करे तो उसका मन लगने लग जाए, छोटे सा प्रेम भक्ति प्रकाश तत्संतान पहले भाग में ही है और एक ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप, तो ग्रंथों के पढ़ने मात्र से ऐसे बात हो जाए, तो इस पुस्तकों में ऐसी शक्ति है श्रम लगाने की, शेर जी ने कहा बड़ी बड़ी पुस्तक कल्याण करेगी घर में बड़ी बड़ी पुस्तक, कौन कहा था अभी इतनी सस्ती है सैकड़ों रुपया देने पर भी मिलेगी नहीं, ऐसा समय आने वाला है, अब अपने शाम नहीं आवे परंतु बस मिलेगी नहीं, आज तो इतनी बढ़ रही है मिलनी मुश्किल हो जाएगी, तब अब गीता प्रेस जैसे सस्ता दे रहा है पुराण शेष जी का चलाया हुआ एक मार्ग चल रहा है, एक गाड़ी चल रही है, परंतु पीछे जन्म जन्म के पीछे तो जैसे हम लोग होंगे वैसी तो संस्था होगी, हम लोगों की परंपरा पीछे जैसे होगी वैसी होगी, तो आगे क्या पता है इस बात का। इसमें खर्चा बहुत लगता है, ये भी खर्चा बहुत है, खर्चा कम करो, पैसा लगता है, पैसा लगता है। अब भी दृष्टि हो गई है शेष जी के बाद भी। मैं तो कहा था सब आदमी कि कैसे काम चलेगा, बिहारी लाल जी बोले कि पैसे में काम कैसे चलेगा, आप बचाना मुश्किल है, अब कठिन है। शेर जी ने पैसे के बदले पर, पैसे के बल पर काम नहीं चलाया था, जहाँ अकाल पीड़ितों का काम है, दंगा पीड़ितों का काम है, जहाँ भूकंप का काम है, ऐसे जहाँ लाखों करोड़ रुपए लग जाए, 10,000 रुपए होने पर शेर जी काम शुरू कर दो, 10,000 ही है, कितना करोड़ रुपए काम जितना अगर काम है कर दो शुरू, फिर रुपये आते जाते लगते जाते कर दो शुरू। लोग सब समझते हैं कि रुपया पहले हो तब काम होता है, शेठ कहते काम करने वाले आदमी होना चाहिए, रुपये की परवाह नहीं, आप आएगा जो आता है या जो होता है काम, पर रुपयों का महत्व हृदय में होता है तो हमारा ये काम नहीं होता। ये काम तो हृदय की दुनिया के उद्धार की, जीव के कल्याण की उस लगन से होता है। आदमी मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, स्थान मिल जाता है, मौका मिल जाता है, सब अवसर आ जाते हैं जब हृदय की भावना ऐसी होती है। तो भाई बहनों से कहना है उद्धार करो, सब का कल्याण करो और रक्षा करो, वंश की रक्षा करो और प्रार्थनाएं की कृपा करो, सबका उद्धार हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु आ गया, सब सुख हो, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, ना माँ कष्ट दुख भाग भवे, किसी को दुख भोगना न पड़े, ऐसा विचार तो आया था। मैं क्या सुनावे, मन बताए समय की बात सुना, ऐसे मन में आई थी, समय जा रहा है, मंदिर जन्म का समय ही खर्च हो रहा है, तो समय का सदुपयोग करो, बात ये आई थी मन में, फिर से आगे छेड़ दिया था, तो बात आगे से बात मनुष्य का समय बड़ा कीमती है, मनुष्य धन कमा सकते हो, समय देकर विद्वान बन सकते हो, समय बांध करके एक अनेक परिवार हो जाते हो, समय देकर के संसार में यश कीर्ति हो जाती है, नाम हो जाता है, समय देकर के समय दे मिल जाए भगवान, इतना कीमती समय आपका मनुष्य जन्म का, वो समय तार सौपर में खेल तमाशा में लोगों की चर्चा करने में समय जाता है, कितना नुकसान हो रहा है, वो समय भगवान के भजन में लगाओ, भगवान कीर्तन में लगाओ, उपकार में लगाओ, दुनिया के हित करने में लगाओ, जिससे समय सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य धर्म सफल हो जाए। और कोई बात आप पूछो, समय होने वाला है, कोई बात आबादी बढ़ रही, मुसलमानों के नाश कर रहे हैं हिंदुओं का, आबादी बढ़ रही है उसको घटाने के लिए 60-60 लड़का लड़की एक मुसलमान के, 20-20 लड़का लड़की एक एक मुसलमान के, आबादी तो बढ़ तो रही है मुसलमानों की और नाश कर रहे हैं हिंदुओं का, बताओ इसमें झूठी हो तो बताओ।